ओम शांति। आध्यात्मिकता द्वारा कला एवं कलाकारों का दिव्यकरण में परमात्मा का प्रिय कलाकार कौन है? परमात्मा का प्रिय कलाकार आदरणीय सूरज भाई जी हमारे बीच पधारे हैं। हम करतल ध्वनि से भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। इतने परम आदरणीय भाई साहब का परिचय कराते हुए आज मुझे अति हर्ष हो रहा है। पिछले 60 इयर्स से भाई साहब इस ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन करते हैं। आप इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगा शिक्षक हैं, टीचर हैं। आप सबने देखा होगा नीचे आबू रोड शांतिवन में जो बाबा का भंडारा है, जहां लगभग 25,000 30,000 20,000 लोगों का भोजन बनता है। इसकी सेवाएं आप बहुत सुचारू रूप से संभालते हैं। इसके अलावा पीएम टीवी में भाई साहब के बहुत सारे लेक्चर्स आते हैं और वर्तमान समय समाधान स्वरूप जो यहाँ बैठे हुए कई भाई बहने इसको देखते होंगे और इस समाधान स्वरूप प्रोग्राम से कई भाई बहनों का समस्या का समाधान मिल जाता है, उसका भी उनको बहुत लाभ मिलता है। देश विदेश में आपने इस ईश्वरीय ज्ञान देकर के अनेक निराश आत्माओं के जीवन में आशा की किरण जगाई है। ज्ञान का चिंतन मनन एवं दिव्य प्रतिभा के धनी योग के प्रयोग द्वारा आपने सबकी आत्मा की ज्योति जगाई है, सबकी प्रीत परमात्मा के साथ जुड़ाई है। आज के युवा जो डिप्रेशन से ग्रसित है, उनको डिप्रेशन से निकाल सक्सेसता की ओर आगे बढ़ाने के लिए ऐसे परम हितेशी और विशेष रूप से परमात्मा के साथ मिलन मनाने की विशेष आपके अंदर कला है, वो विधि विधान बताने वाले ऐसे परम आदरणीय परम श्रद्धेय सूरज भाई जी का हम बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं। और भाई साहब से हम सुनेंगे कि शांति की अनुभूति कैसे करें। विशेष रूप से अगर हम आप सब से पूछेंगे तो सभी की चाह यही रहे कि हम सभी इस परमात्मा के घर में आए हैं शांति की अनुभूति करने के लिए, जो कहीं नहीं मिलेगी। तो आज हम भाई साहब से सुनेंगे शांति की अनुभूति कैसे करें। आदरणीय भाई साहब।
ओम शांति। यहाँ आकर तो आप सभी का चित्त शांत हो ही गया होगा। हो गया? सच काफी ठीक हो गया? शांति भी, सुख भी, खुशी भी, आनंद भी, सब आप यहां पर देख रहे होंगे अनुभव से। लेकिन हम सभी को सीखना है कि जहां भी आप रहते हैं वहां भी ये मनोस्थिति बनी रहे, व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में और अपने प्रोफेशन में। तीन मनुष्य के फील्ड होते हैं, तीनों में शांति रहे। संसार में कोई भी एरिया हो किसी का, किसी भी फील्ड में कोई कार्य कर रहा हो, उसे ईर्ष्या द्वेष का सामना करना पड़ता है। लोग एनकरेज करने की बजाय, बहुत सारी चीजें हैं डिस्करेज, नहीं लेग पुलिंग भी करेंगे, कई सोचेंगे इन्हें हटा ही दें रास्ते से तो हम आगे आ जाएं। बहुत सारी बातें प्रोफेशनल फील्ड में सबको सामना करनी पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है मनुष्य का पारिवारिक जीवन। अगर वहां शांति और खुशी है, मैं शांति के साथ खुशी को भी जोड़ रहा हूं, जरूरी है ना, अगर वहां शांति और खुशी रहती है तो मनुष्य की कार्य शक्ति बहुत बढ़ जाती है। हम एक मूल सिद्धांत को लेकर इस सब्जेक्ट पर चलेंगे आगे, वो आप ध्यान में ले लें अपने, और ये बात संसार में सभी को सीखनी और सिखानी है। सीक्रेट है ये, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सीक्रेट ऑफ पीस और हैप्पीनेस। क्या है? मन जितना शांत होगा, ठीक है, बौद्धिक शक्ति उतनी ही तीव्र हो जाएगी। देखिए, मनुष्य एक मिनट में 25 विचार करता है लगभग। ये अगर कम कर दिए जाएं 20-15, इतने तक ही बस, तो चित्त बहुत शांत रहने लगेगा। शांति के लिए बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीवन में शांति आ जाएगी। हमें सीखनी है ये कला। किस मनुष्य का मन ज्यादा तेज चलता है? सब अपने अपने को देखें, छोटे बच्चों का भी आजकल बहुत तेज चलता है। जिसको निगेटिव सोचने की आदत है, जिसको बहुत सोचने की आदत है, दो बातें खास ध्यान देंगे, उनका मन बहुत तेज चलता है। दो बातें और, जिन्होंने ज्ञान लिया है वो ये लैंग्वेज समझते हैं अच्छी तरह। जिनको दूसरों को देखने की बहुत आदत है और दूसरों का, जिसे परचिंतन कहते हैं, उसकी बहुत आदत है, उनका मन भी बहुत तेज चलता है। जिसको कंपैरिजन करने की आदत है, जिसके मन में क्रोध आता है, उसके मन की स्पीड भी तेज हो जाती है। हमें इन सब चीजों से बचना है। सबसे बड़ी कला है मनुष्य के लिए कि वो ये सीख ले कि मन की स्पीड को स्लो डाउन कैसे किया जाए। सीखनी है ये कला सबको। भिन्न भिन्न बातें आती हैं जीवन में, व्यक्तिगत में भी, परिवार में भी, लेकिन उन सब में हम कैसे मन की स्पीड को धीमा रखें। और यहां राजयोग सिखाया जाता है। सीख रहे हैं आप? किस किस ने सीख लिया आपसे पहले ही? जो सेंटर्स में जाके थोड़ा बहुत सीखे हैं वो हाथ उठाओ। ठीक है, बाकी यहां आपको सिखाया जा रहा है राजयोग से मन शांत भी होता है और शक्तिशाली भी। आजकल इस चीज की बहुत जरूरत है कि हम न केवल शांत रहना सीखें, लेकिन अपने मन को बहुत शक्तिशाली भी बनाएं। क्यों? बोलो, दोनों में से कोई उत्तर दे। हैं? हाँ, यही बात है कि जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं। लोग भी आपके सामने ऐसे आएंगे, कोई आपसे व्यवहार ही खराब करेगा, आपके मन को डिस्टर्ब करेगा, आपको टेंशन देना चाहेगा। उस सबको फेस करने के लिए मन को हमें शक्तिशाली भी बनाना है। शांति का अर्थ ये नहीं कि हम कमजोर बन जाएं। कभी कभी लोग कमजोर बन जाते हैं। शांति चाहिए मुझे, मुझे अकेला रहने दो, मेरे से कोई बात न करे, मुझे कोई छेड़े नहीं। ये भी बहुत कहते हैं, जैसे सांप शांत रहता है और उसे छेड़ दो तो फुंकारने लगता है। कहा कोई मुझे छेड़ेगा तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है, कोई मुझे छेड़े नहीं। पर ऐसा हो सकता है कोई छेड़े नहीं? तो होगा ही नहीं, तो क्या गुस्सा करते रहेंगे? क्रोध से चित्त अशांत होता है। अब अशांति के बहुत सारे कारण हैं, परंतु ये मनोविकार मनुष्य को अशांत कर रहे हैं। किसी को क्रोध, किसी को अभिमान, किसी को लोभ, किसी को मोह। अभी मैं आया तो मुझे अखबार दिया, मैं सवेरे अखबार नहीं पढ़ता, तो उसमें एक लेख था, वो ही मुझे देखना था। नेपाल में जो कुछ अब हो रहा है, जो हो गया वो तो सुन लिया सबने, जो कुछ अब हो रहा है, तो भारत के किसी अच्छे बड़े पत्रकार ने सब कुछ वहां जाकर जो रिपोर्ट तैयार की, उसको पढ़ के लगता है कि देखो मनुष्य जब ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है तब हर व्यक्ति अकेला है, कोई उसके साथ नहीं है। एक टाउन का वर्णन वो कर रहे थे, नाम तो उनके अपने, कहा जहां 2000 लोगों के मरने की तो पुष्टि हो गई है, प्रधानमंत्री वहां के 5 दिन बाद वहां पहुंचे। इन्होंने पूछा आप इतने लेट यहां क्यों आए, हाथ जोड़ दिए बस, उत्तर नहीं दिया। हो सकता है उनके पास उत्तर ना हो, या वो बहुत व्यस्त हों, या त्रासदी इतनी बुरी उनके चेहरे पे शांति खुशी तो हो ही नहीं सकती। वर्णन किया उस टाउन का कि जो टाउन में बचे लोग हैं वो बाहर हैं, बारिश होती रहती है, न बिस्तर है, न दवाइयां हैं, न पानी है, मुर्दों की बदबू आ रही है, रात को सो नहीं पाते, दिन में फिर अपनों को ढूंढने चल देते हैं। सोच के देखो कितना बुरा हाल है। ऐसे में कौन किसको मदद करे, सरकारें कुछ नहीं कर सकती, सच तो यही है। अब वहां ऐसे ऐसे गांव हैं, मैं भी गया हूं नेपाल में 2 बार, मुझे बताते हैं लोग जो क्लास करने आते थे ना हमारी श्याम को, वो बताते थे कि हम सवेरे घर से चले थे। जब मैं उनसे पूछता था सवेरे क्यों नहीं आए क्लास में, तो बताते थे हमारा गांव इतनी दूर है कि बस जहां हमें छोड़ती है वहां से पैदल जाने में हमें 5-6 घंटे और लगते हैं, छोटी पगडंडी घूम घूम के जा रही, कभी ऊपर चढ़ रहे कभी नीचे उतर रहे हैं, ऐसे दूर दराज वहां गांव हैं। कौन पहुंचे वहां, हेलीकॉप्टर से भी कितनी चीज डाली जाए, कहा बस हेलीकॉप्टर से भोजन डाल देते पहाड़ी, जरूरी नहीं वो उन्हें मिल जाए, कुछ इधर गिरा कुछ उधर गिरा भूखे प्यासे। ऐसे में मनुष्य को बहुत शक्तियों की जरूरत है। अब सोचो जो मर गए वो तो सुखी, जो जिंदे हैं हाल तो उनका खराब है ना। तो हम सभी को शांति के साथ शक्तियों की भी जरूरत है। ये परिस्थितियां आती रहती हैं, बात भूकंप की आ गई, मैं आपके सामने एक बात रख देता हूं, ये सब्जेक्ट नहीं है फिर भी एक क्लेरिफिकेशन के लिए। एक बार मैं मेरठ में गया, हमारा लौकिक प्लेस है वहां नेटिव, तो जैनियों ने एक जम्बूद्वीप बनाया है वहां थोड़ी दूरी पर, उसको देखने हम गए, बहुत सुंदर स्थान बनाया। वहां एक किताब बिक रही थी, मैंने वो ले ली, उसका हेडिंग इतना अच्छा था, मतलब अच्छा तो नहीं वो बात तो खराब है, पर इतना वो जानने योग्य बात थी कि मैंने उसको खरीदा। और उसमें उन्होंने वर्णन किया था कि ये जो मर्डर होते हैं ना धरा पर जीव जंतुओं के, ये प्रमुख कारण है भूकंप का। डिटेल था वो, उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि नेपाल की त्रासदी से कुछ दिन पहले ही नेपाल में तांत्रिकों ने सब में एक अफवाह फैला दी कि भैंसों की बलि चढ़ाओ तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और लोगों ने जो व्हाट्सएप पे संदेश आया उसमें था लाखों भैंस और उसके बच्चों की बलि चढ़ाई, लाखों कितने होते हैं, कहा जहां तहां मैदानों में ये काम किया गया, खुले मैदानों में। धरती दहल गई क्योंकि उनके जो वाइब्रेशंस होते हैं ना भय के, बहुत बुरे फैलते हैं चारों ओर, और एक साथ जहां ऐसा काम हो रहा हो उसका इफेक्ट प्रकृति पर बहुत बुरा पड़ता है। मैं भी इस बात को पहले से ही जानता हूं कि जो संपूर्ण प्रकृति है ये मनुष्य के वाइब्रेशन से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती है, इसलिए हम सभी को इन चीजों से जरा अलग रहना है। ये धर्मों में जो अंधश्रद्धाएं आ गई हैं, भला बलि चढ़ाने से देवियां प्रसन्न होती हैं क्या, वो तो देवी नहीं है, जो देवी मांसाहारी है, जो वायलेंस से प्रसन्न हो रही है, वो देवी नहीं है, लोगों ने गलत मान लिया है। और न बलि चढ़ाने से कोई धार्मिक भावनाएं ठीक होती हैं। आपका क्या विचार है? ठीक है ना? धर्म का तो पहला ही सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म, लिखा हुआ होता है ना। तो जहां धर्म का पहला सिद्धांत ही अहिंसा है, वहां हिंसा को, वो भी जीव जंतुओं की, भैंस की, कितना कष्ट होता है। मैंने तो अपनी आंखों से एक बार ये कष्ट देखा। केवल एक मंदिर हमें घुमाने ले गए महाराष्ट्र में, देवी का मंदिर, बाहर एक बकरा खड़ा था और वो बकरा वहां खड़ा किया था जहां बकरे की बलि दी जाएगी। अब देखिए आप, बकरा जिसको कितनी बुद्धि है, उसको ये पता चल गया कि मेरी बलि चढ़ने वाली है। और जब हम 25 लोग उसके पास खड़े देख रहे थे उसे जिंदे को, तो वो कांप रहा था, उसका अंग अंग कांप रहा था। हम लोग हैरान हो गए, हमें दिखाने वाले वहां के ट्रस्टी थे। मैंने कहा, आप लोग इसको बंद क्यों नहीं कर देते? कहा, हम 20 ट्रस्टी हैं, हमने इसको बंद किया हुआ था, अभी राजा का लड़का एमएलए बना, उसने फिर चालू करा दिया, कई ट्रस्टीज को अपनी ओर मिला लिया। तो देख, हम उस बकरे को देखकर हम सोच रहे थे, जो इसके मांस को भोग समझकर खाएंगे, इसके ये भय के वाइब्रेशंस उसके अंदर जाएंगे, उसका क्या हाल होगा? ये धर्म नहीं अधर्म है। हम पुनः शांति की बात पर आ जाएं। अब देखिए, कितनी बड़ी नेपाल की त्रासदी में लोगों को अभी पता नहीं चल रहा। आज के अखबार में तो 15,000 लोग मर गए हैं, पर इस पर एक जीरो लगा दें, इतने मर गए हैं, 1.5 लाख कम से कम वहां मृत्यु को प्राप्त हुए होंगे। तो हम सभी अब गहराई से चिंतन करेंगे कि हमें अपने चित्त को शांत करना है, पॉजिटिव करना है, शक्तिशाली बनाना है। पहले व्यक्तिगत रूप से हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे यहां, लेकिन एक दो बात पर आप विचार करें। मनुष्य का मन तेज गति से क्यों चलने लगता है? एक सुंदर फॉर्मूला आज ले लेंगे इस क्लास से आप। बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। क्या विचार है? सबके अनुभव होंगे ये। किसी भी बात को आप एनालिसिस कर लो। जीवन में जो बात आपके 10 दिन पहले घटी है, जब उसकी रियलिटी सामने आई होगी, तो आपने जरूर सोचा होगा कि अरे, बात तो बहुत छोटी थी, हम सारा दिन ऐसे ही परेशान रहे सोच सोच के। इससे हमारी इनर पावर नष्ट होती है, इसका इफेक्ट हमारे जीवन की सफलता पर पड़ता है, हमारे संबंधों पर पड़ता है। बहुत सटिल लेवल पर आप विचार करेंगे, जो मनुष्य ज्यादा सोच रहा है उससे लगातार निगेटिव एनर्जी चारों ओर फैल रही है। ध्यान से सुन लेंगे सभी, मैं अगर बहुत सोच रहा हूं और निगेटिव सोच रहा हूं, या किसी के बारे में कुछ सोच रहा हूं खराब, तो यहां बैठी आत्मा, उसे निगेटिव एनर्जी पहले ब्रेन को जा रही है, फिर चारों ओर फैल रही है। पहले ब्रेन पर बुरा इफेक्ट डाल रही है, फिर चारों ओर हमारे रिलेशनशिप्स पर बुरा इफेक्ट डाल रही है। ध्यान देंगे आप तो, बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उसे बड़ा कर देते हैं। सब विचार कर लें अच्छी तरह, हम जरा अपने सोचने पर ध्यान दें। रोज कुछ समय सभी को शांत में बैठकर अपने अंदर झांकना ही चाहिए। मैं जो कुछ सोचती हूं, सोचता हूं, क्या वो मुझे सोचना चाहिए? शांत में बैठकर अपने को ऑब्जर्व करेंगे तो अनेक विचार शांत हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी विधि है। चलिए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं 2 मिनट। रेड लाइट, सभी फोकस करेंगे आत्मा पर। देखो भाई, लाइट वाला है, सुरेश हाँ रेड लाइट कराओ। आत्मा पर फोकस करें, मैं चमकती हुई मणि, देखें अपने अंदर आत्मा ब्रेन के बीच में बैठी है, चमकती मणि, बहुत सूक्ष्म पॉइंट ऑफ एनर्जी। आप चाहे आंख बंद करके इसको विजुअलाइज करें, चाहे खोल कर, मैं पीसफुल हूं, मैं शांत हूं, मुझसे चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, मैं पीसफुल हूं, शांत हूं, मैं इस देह से न्यारी हूं, जैसा ये शरीर है मुझे वैसे अनेक शरीर मैंने लिए हैं और छोड़े हैं, अब मैं इस शरीर में विराजमान हूं, मैं देह से न्यारी, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, मैं शांत हूं, ओम शांति। हम सभी को रोज सवेरे थोड़ा जल्दी उठेंगे, थोड़ा सा जल्दी, यहां तो जल्दी उठाया जाता है, आप में से कोई कोई उठते होंगे, थोड़ा जल्दी उठने की आदत डालें, प्रकृति के सौंदर्य को निहारें, जरा सवेरे उठकर घर से बाहर आ जाएं, कल यहां करना, देखना प्रकृति में कितनी ब्यूटी है, कितने सुंदर वाइब्रेशंस हैं इसमें। सवेरे के समय हम उठेंगे, वो वाइब्रेशंस हमारे अंदर आएंगे, और सवेरे उठकर 7 बार संकल्प करना, बहुत ये सुंदर विधि है, मैं भगवान की संतान हूं, पीसफुल हूं, बिल्कुल ये संकल्प करते ही चित शांत होने लगेगा, शांति के वाइब्रेशंस ब्रेन को जाएंगे, शांत करेंगे उसको, जो तपन है जीवन की वो शांत होने लगेगी, बहुत फायदा होगा। मैंने एक बात आपको कही, हम सोच सोच कर किसी बात को बड़ा कर देते हैं, अब इसको कैसे कम करें, एक बहुत सुंदर बात, सवेरे उठते ही ये भी करना, सवेरे के हर मनुष्य को ये सोच लेना चाहिए, सवेरे आधा घंटा हमें अपने को चार्ज करना है। सारा दिन मान लो आप अपने कार्यों में रहते हैं, जो भी आपका कार्य है, सवेरे हम अपने को एनर्जेटिक करें, ताकि सारा दिन हमारा तनाव से मुक्त बीते, हम बहुत एनर्जेटिक रहें और हम अपने कार्यों को एंजॉय करें। बहुत सुंदर चीज है अपने हर कार्य को एंजॉय करना, टेंशन से जीवन जीने से तो जीवन का सारा सुख चला जाता है। तो इसी के साथ सवेरे जोड़ेंगे, हम भगवान के बच्चे हैं, हैं सभी भगवान के बच्चे, महान होंगे। आप इस सत्य को स्वीकार कर लें, आज हम भगवान की संतान हैं, देयरफॉर वी आर ग्रेट, हम महान हैं। ले चलो इसको अपने अंदर, भगवान के बच्चे पापी नहीं। जो मंदिरों में जाके लोग कह देते हैं ना, मैं तो दास हूं तुम्हारा, हे प्रभु भगवान स्वीकार नहीं करता, तुम मेरे दास नहीं हो, क्या हो, क्या हो, बच्चे। दास और बच्चे बहुत बड़ा डिफरेंस, हम दास नहीं, हम भगवान के बच्चे, अधिकारी भिखारी नहीं, हम महान हैं, हम भगवान के बच्चे बहुत शक्तिशाली हैं। तो दूसरी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, जीवन में आने वाली बातें बड़ी नहीं, बड़े तो हम हैं। अपने को फीलिंग देना, रोज दिलाना, सवेरे 6 बजे तक का आप ये काम कर लें तो बहुत अच्छा होगा, ये बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो हम हैं। तो इससे बातों का फोर्स डाउन हो जाएगा, आप उनसे पावरफुल अपने को फील करेंगे, बातों का जो इफेक्ट मन पे रहता है वो समाप्त हो जाएगा। योग बल बहुत बड़ा बल है, जो योग आपको यहां सिखाया जा रहा है वो बहुत बड़ा बल है। मुझे एक छोटी सी बात आपको सुनाने को याद आ गई, अभी नजदीक में ही दिल्ली के एक थोड़े बड़े व्यक्ति हमारे पास आए, हमारी क्लास में थे, योग करते हैं 7-8 साल से, अच्छी बड़ी पोस्ट पर हैं। तो कहा, हमारे फादर के समय से कोर्ट में हमारा एक केस चल रहा था और उस केस को हो गए थे 35 साल, 35। हम भी सोचने लगे, हमने उसे पूछा 35 साल तक भी केस चलते हैं क्या, कि हाँ हमारा चल रहा था, टेंशन रहती थी। तो इसने 21 दिन तक 1 घंटा रोज योग अभ्यास किया कुछ संकल्पों से, और कहा 21 दिन पूरे ही हुए थे, 25वें दिन हमारी तारीख लगी और उसी दिन फैसला हमारे फेवर में आ गया। 35 साल से चलने वाला केस, वो फादर भी चले गए, वो है ही नहीं, अब हलाकर हुआ। हम ये देखते हैं, हम अपनी इनर पावर्स को यदि बढ़ा दें, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा दें, तो बहुत बड़ी बड़ी जीवन की समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। मैं तो आपको ये कहूंगा, जिस भी कार्य में हैं आप, योग अभ्यास से अपने टैलेंट्स को बढ़ाएं, नए टैलेंट्स का आह्वान भी आप कर सकते हैं, सफलता का भी आह्वान कर सकते हैं। मैंने बहुतों को ये चीज सिखाई और मेरे सहित बहुतों ने अनुभव किया कि जो टैलेंट है नहीं, योग बल से वो आ गए जीवन में, क्योंकि वो सारे हमारी बुद्धि में समाए रहते हैं। ब्लॉकेज कहीं हो जाता है, हमने उस पर कोई लेयर डाल दी होती हैं, योग बल से वो हट जाती हैं, हमारी वो योग्यताएं ऊपर आ जाती हैं। तो अपने पारिवारिक जीवन को शांत करने के लिए, दो बातें मैंने आपको ये बताई व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन में अच्छा अनुभव करने के लिए, बड़ी बातों को छोटा करने का संस्कार बना लें। सभी जो युवक बैठे हैं ध्यान से सुन लेंगे, जिस मनुष्य में होल्डिंग नेचर होती है, समझ गए ना, बातों को पकड़कर रखने की आदत, एक है कि मनुष्य बातों को पकड़कर रखता है और दूसरा होता है, चेक कर लें अपने को, नहीं मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं, कुछ बात हो गई थी 10 साल पहले, उसका इफेक्ट इधर पकड़ के रखा हुआ है, बुझा नहीं रही है। परसों कोई बात हो गई थी, हफ्ते पहले कोई बात हो गई थी, उसका इफेक्ट मन में समाया हुआ है, उससे खुशी नहीं है, नए विचार नहीं आ रहे हैं, सुंदर बातें नहीं पैदा हो रही। इससे पहले मैं एक चीज और कह दूं, हमारे पास, हमारे मन और बुद्धि के अंदर, हर एक के पास बहुत ज्यादा क्रिएटिव एनर्जी है, सबको ख्याल रहे। लेकिन अगर हम बहुत विचारों में हैं, मैं एक उदाहरण दूं, आजकल घर घर में टीवी बहुत चलती है, बच्चे सारा दिन टीवी देखते रहते हैं, पढ़ के आए टीवी, कोई कोई तो बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं इंटरनेट का, मोबाइल पे बातें कर रहे हैं, तो इससे क्या नुकसान हो रहा है कि हमारे अंदर जो क्रिएटिव एनर्जी है वो यूज ही नहीं हो रही, तो मनुष्य नया क्रिएट नहीं कर पा रहा है, वो सारा दिन उन पर सोच रहा है जो देख रहा है। यही बात मैंने आपको कही, कोई भी चीज हमने होल्ड कर ली है, हमने अपनी बुद्धि में पकड़ के रख ली है, तुमने मुझे 10 दिन पहले ये कहा था, देखो बहुतों की आदत है ये, उसको पकड़ के रखा हुआ है, 10 दिन हो गए तो वो बात मन पे ऐसी छाई हुई है कि हम नया सोच ही नहीं पा रहे कुछ, हमारी क्रिएटिव एनर्जी नष्ट होती जा रही है। इसलिए युवक इस बात पर ध्यान दें, कुछ भी पकड़ कर नहीं रखना, सुन लें अब उस बात को पूरा, जिस मनुष्य में होल्डिंग नेचर है, जो बातों को पकड़ कर रखते हैं, वो आने वाले स्वर्णिम अवसरों को मिस कर देते हैं। बड़े जो बैठे अपने बच्चों को सिखाएंगे, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति के पास आ रही है, रोज आ रही है, लेकिन अगर आप कहीं और बिजी हैं तो गई, आपने कुछ पकड़ के रखा हुआ है तो निकल गई। इसलिए बड़ी बातों को छोटा करना पसंद है, बातों को पकड़ना नहीं, छोड़ते चलो, छोड़ो छोड़ो तो नहीं आए ना, मुट्ठी बंद की हुई है, खोलें तो कुछ नई चीज मिले ना, छोड़ो तो नई बातें आएंगी। इसलिए सभी को जो युवक बैठे हैं विशेष ध्यान देना है, जिस फील्ड में भी आप हैं, बहुत अच्छी प्रोग्रेस के लिए अपनी क्रिएटिव एनर्जी को यूज करो, उसको दबने ना दो, उसको मरने ना दो, ये हम सबके पास है, बहुत अच्छी है। और ये कोई ये भी ना सोचे कि वो पढ़ाई से आती है, बहुत सारी डिग्री लेने से वो आती है। मैं लोगों को कहा करता हूं, सूरदास ने कौन सा स्कूल कॉलेज देखा था? देखा था, उसके सूर सागर पे लोग पीएचडी कर रहे हैं, थेसिस लिखी जा रहे, प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं। कबीरदास जी बेचारे गए थे कभी स्कूल में? बुद्धि कॉलेजों से नहीं मिलती, बुद्धि हर एक के पास है, उसको जरा आप जागृत करें। एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो सकता है, एक बहुत ज्यादा डिग्री होल्डर व्यक्ति भी आपको लगेगा इसको कुछ नहीं आता, हमने तो ऐसे लोग देखे हैं, कुछ नहीं आता उनको, बहुत सारी डिग्री ले ली कुछ आता ही नहीं, हिंदी में एमए कर लिया, 4 लाइन लिखवाओ तो 10 गलतियां लिखते हैं, 10 मिस्टेक पकड़ सकते हैं आप उनकी। तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट्स हैं, घरों में परिवारों में बातों को पकड़कर नहीं रखना है, और विशेष जो मातृ शक्तियां बैठी है उनका परम कर्तव्य है, जो बड़े बैठे हैं उनका कर्तव्य है, कोई बात हो जाए जल्दी से जल्दी खत्म करवाओ, छोड़ो भाई से छोड़ो, आगे चलो। एक ही बात को बार बार बोलते रहना कईयों की आदत होती है, एक ही बात बार बार रिपीट करना, कहते रहना तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो ऐसे ही हो, सुधरोगे ही नहीं, हमने बहुत देख लिया है, तुम तो कुत्ते के पूंछ की तरह हो, नली में रखी 12 साल तक, निकाली तो भी टेढ़ी थी, तुम नहीं सुधरोगे। तो क्या होगा, जो सुधरने वाला व्यक्ति है वो भी सोचेगा भाई इन्होंने वरदान ही दे दिया है, सुधरना नहीं है तो चलो ठीक है, ऐसे ही ठीक है। घरों में मैं एक सुंदर सी चीज आपको एक कहानी के माध्यम से कहना चाहता हूं। कहानी क्योंकि आपको याद रहेगी। अपने अपने घरों में सभी एक दूसरे को एप्रिशिएट करें, ये कला आप चालू कर दो। कईयों में होगी ये, जैसे आप में से कोई बहुत अच्छा गीत गाए तो सभी एप्रिशिएट करते हैं ना, ताली बजाते हैं, वाह वाह करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ये कहें क्या गाया, इसे तो अच्छा ये गा देता। ऐसा तो नहीं करते ना हम, कैसा भी गाया हो हम सब उसको एप्रिशिएट करते हैं, एनकरेज करते हैं, बहुत अच्छा किया, तो वो और अच्छा करते हैं। और मनुष्य को डिस्करेज किया जाए, बार बार उस पर कमेंट्स किए जाएं, तो मनुष्य के टैलेंट्स दब जाते हैं। तो मैं आपको घरों के लिए एक कहानी सुनाता हूं, सुना दूं, बहुत काम आएगी आपके। एक लड़की की शादी हुई, वो घर गई ससुराल, बहू वो सास बहुत तेज तराक थी, सास उसको स्वीकार ही नहीं कर रही थी। होना तो ये चाहिए ना भाई, बहू आ गई अब ये भी मालिक है घर की, उसको सम्मान दिया जाए। लेकिन कई सास क्या सोचती हैं कि ये लड़की कहां से आ गई मालिक में, और ये मालिक बन जाएगी, अब इसको सीधा करती हूं अभी। तो थोड़ा वो रफ व्यवहार था उसका। लड़की 3 मास रही, सोचा यहां तो मेरा जीवन बहुत खराब हो जाएगा, अब मैं जा तो नहीं सकती। अपने घर गई अंकिल के पास और अंकिल को कहा मेरी सास बहुत तेज है, उसको मैं मार देना चाहती हूं, जहर दो कोई। आजकल हो जाता ना ज्यादा गुस्सा मन में चल रहा हो। अंकिल तो बहुत समझदार थे, कहा जहर से तुम मार दोगी तो पकड़ी जाओगी जेल में, तो मैं तुम्हें एक स्लो पॉइजन देता हूं, धीरे धीरे असर करेगा 6 मास में, तुम थोड़ा थोड़ा भोजन में डालते रहना उसके। लेकिन एक शर्त है उसकी, एक परहेज है, और वो ये है कि तुम अपनी सास की रोज महिमा करोगी। उन्होंने कहा ये कौन सी बात है, महिमा करना क्या है। वो गई, जाते ही सास की महिमा करनी शुरू की, वो डालती रही भोजन में, सास खुश। अब वो कहे मेरी सास तो जो भी आए, मेरी सास तो मां से भी अच्छा प्यार देती है मुझे, और वाह मैं तो स्वर्ग में आ गई हूं, ऐसी सास तो सबको मिले, और मेरी सास तो ये है वो है। अब सास ने देखा बहू घर जाके बदल आई, अब सास से भी नहीं रहा गया, उसने भी उसकी महिमा चालू कर दी। 2-4 दिन के बाद जब देखा ये रोज ही मेरा गुणगान कर रही है, तो मैं क्यों इसकी बुराई करूं, अरे मेरी बहू तो देवी है, मुझे कुछ नहीं करने देती, सो के उठती हूं तो चाय तैयार रखती है, पैर दबाती है मेरे, वाह ऐसी बहू है सबको मिले, इसके आने से तो हमारा घर स्वर्ग बन गया। 3 मास हो गए, अब वहां तो प्यार का माहौल हो गया। अब ये बहू फिर अपने घर गई, अंकिल को कहा अंकिल बड़ी गलती हो गई, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मैं उसे मारना नहीं चाहती, अब वो जो जहर दिया ना 3 मास उसका असर खत्म करने के लिए कोई दवाई बताओ। अंकिल ने कहा अरे पगली वो जहर नहीं था, मैंने तो तुम्हें राख दी थी, जहर तो तुम्हारे मन में था, उसको निकालना था। संबंधों को सुधारने का ये सबसे सुंदर तरीका है। जो सास यहां बैठी वो भी समझ लें, और जिनकी शादी होने वाली या हुई है वो भी समझ लें। एक दूसरे को सम्मान देना, उनको सिखाना, ये बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत ही अच्छी चीज। एक और अच्छी चीज मैंने पढ़ी, मैं सोचा वो भी आपको सुना दूं। पति और पत्नी दोनों ही नौकरी करते, अभी पत्नी भी थक कर आई, शाम को रोटी बनाई, पति तो रेस्ट करने लगा, अभी बहन जी को तो सारा घर का काम भी करना पड़े, बच्चे भी देख रहे थे। बहन जी ने सब्जी दी, पति को भोजन दिया, रोटी जली हुई थी। पति ने बड़े प्यार से कहा मुझे रोटी जली हुई बहुत टेस्टी लगती है, और खाया बड़े प्यार से। बच्चे देख रहे थे, खुश हो गई उसकी मिसेज सुन के कि कुछ कहा नहीं। बच्चे ने जब सोने चले गए तो पूछा पापा रोटी तो जली हुई थी फिर भी आपने बड़ी महिमा की और प्यार से खा ली, कहा बेटा मैं जानता हूं तुम्हारी माँ भी तो बहुत थक के आई थी ना, वो थक के आई थी मनुष्य रोटी जल जाती है, तो मैंने ऐसे कह दिया वो हल्की हो गई, मुझे जली हुई रोटी से कोई नुकसान थोड़ा ही होने वाला है, मैंने वो जला हुआ अलग रख दिया था खा ली। तो पापा बच्चे बड़े खुश हुए और सीख लिया बच्चों ने कि ये है एक सुंदर तरीका घर में प्यार और शांति पैदा करने का, सबको ऐसा करना है। नहीं तो क्या होता है, लड़की आई पहले दिन रोटी बनाई जला दी, सास चढ़ बैठी, मां ने रोटी बनानी भी नहीं सिखाई, एक दिन तो तुम हमारे घर को भी जला डालोगी। अब बेचारी लड़की डर गई, अगले दिन बनाने लगी और जल गई, सब्जी भी जल गई, अब वो परेशान, सास उस पर चिल्ला रही है तुम तो ऐसी हो, पता नहीं क्या करोगी हमारे घर का। अब इसका माहौल देखिए आप, और दूसरा माहौल देखिए, ऐसे रोटी जल गई, सास कहती है कोई बात नहीं बेटी जली हुई मैं खाऊंगी, तुम दोबारा अच्छी बना लो, ऐसे बना लेना, ऐसे ध्यान देना, उसको सिखा दिया, कैसा घर में माहौल होगा, एक हो जाएगा ना सब। तो शांति स्थापित करना, प्यार पैदा करना अपने परिवारों में, जिससे मैं ये एक बात बहुत अच्छी तरह सबको कहना चाहता हूं, जिस घर में ऐसा माहौल नहीं है वहां बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं होता, जहां हमेशा प्रेशर बना रहता है, जहां उल्टे सुलटे बोल बोले जाते हैं, वहां बच्चों का विकास रुक जाता है। इसलिए अपने बच्चों की भलाई के लिए भी सब माता पिता को और परिवार में जो भी हैं सबको चाहिए अपने घर में प्रेम और शांति का माहौल क्रिएट करें, और ये अपने हाथ में है, हमारा व्यवहार, हमारा सोचने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, हमारे एटीट्यूड्स, ये जीवन में शांति लाते हैं। तो सभी ये थोड़ी सी बातें, कईयों में होंगे ये गुण, जिसमें नहीं है वो इनको सीख लें और अपने अपने घरों में खुशी प्रेम और शांति की सरिता बहाएंगे। पसंद है ना। चलो अब फिर से 3 मिनट डीप साइलेंस में बैठेंगे, फिर से सेल्फ ऑब्जर्वेशन की ओर, अपने परिवार को देखें यहीं से, और एक सुंदर संकल्प कर दें, मेरे परिवार में सभी महान आत्माएं हैं, ये सभी भगवान के बच्चे हैं, हमारा परिवार बहुत अच्छा है, मुझे सबको प्यार देना है, मैं दाता हूं, अपने को देखें अब, मैं मस्तक के मध्य में चमकती हुई आत्मा, मैं भी शिव बाबा की संतान महान आत्मा हूं, बहुत शक्तिशाली हूं, मैं शांत हूं, पवित्र हूं, इस देह से न्यारी हूं, क्लियर फीलिंग लाएं, ये देह अलग, मैं आत्मा अलग, ओम शांति। सभी अपने अपने परिवारों में ध्यान रखेंगे, क्रोध का माहौल न बने, और जिसे ज्यादा क्रोध आता है वो तो यहां दान देकर जाए क्रोध का। देंगे? देंगे। बुराई चीज, बुरी चीज रखनी भी क्या है, दे देना है उसका दान, और एक संकल्प कर लेना है, बस मैं क्रोध शिव बाबा को दान दे दिया है, अब मुझे इससे मुक्त होना पूरी तरह आएगा। फिर संकल्प करो, दे दिया है मैंने तो जाओ वापिस जाओ। थोड़ा सा ध्यान देना है अपने क्रोध पर। मैं एक दो आपको विधि बता देता हूं, इससे परिवार में शांति रहेगी। सब जो युवक हैं वो खास ध्यान दें, क्रोध से विवेक शक्ति नष्ट होती है। क्रोध ही एक ऐसी अग्नि है जो बुद्धि की शक्ति को जलाती है, जबकि हमें बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए। आप अगर गायक भी हैं तो बुद्धि में बहुत अच्छा बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। आप यदि राइटर हैं तो सारा खेल बुद्धि का है, शांत बुद्धि होनी चाहिए। यदि आप डांसर हैं तो भी आपकी बुद्धि शांत होनी चाहिए, तब आप अपने डांस को खुद भी एंजॉय करेंगे और ऑडियंस भी। तो सदा ये याद रखना है, क्रोध मेरा, मेरे जीवन की उन्नति का एक बहुत बड़ा शत्रु है, इससे मुझे मुक्त रहना है। मैं आत्मा तो शांत हूं। देखिए, मैंने भी अपने क्रोध को समाप्त करने के लिए अपने अर्ली इयर्स में बहुत काम किया था। यहां मुझे यहां 60 साल नहीं, 51 इयर्स, बहन जी ने कैलकुलेशन गलत कर ली थोड़ी। तो दो चीज ध्यान रखेंगे, धैर्य चित्त। तुरंत जो रिएक्ट करते हैं ना हम, दूसरे ने कहना पूरा ही नहीं किया और हमने शुरू कर दिया, 5 सेकंड धैर्य। जिसको ज्यादा गुस्सा आता हो वह ऐसा सोच ले, मन को तैयार करे कि मुझे इसकी बात का उत्तर 10 सेकंड के बाद देना है, अभी नहीं, 10 सेकंड के बाद दूंगा, दोगी। 10 सेकंड में चित्त शांत हो जाएगा, क्रोध का जो फोर्स है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरी चीज, हमेशा एक सत्य को स्वीकार करना ही है कि संसार में हर मनुष्य अलग अलग है, उसकी बुद्धि, मन, संस्कार, कार्य करने का तरीका सब अलग अलग है। हर व्यक्ति वैसा काम नहीं करेगा जैसा हम चाहते हैं, या होगा। जितना एक्सपेक्टेशंस को कम करेंगे चित्त भी शांत होगा, क्रोध भी शांत होगा। एक्सपेक्टेशन, जो अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस है ना, उससे बचना है। आपके घर में एक नौकर काम करता है। मैं एक नौकर की कहानी सुनाऊं। एक माता ने अपने घर में 2 नौकरानी रखी हुई थी कार्य कराने के लिए। अब जिसके घर में 2 नौकरानी हो, घर बहुत महल नहीं, छोटा घर 3-4 कमरों का, 2 नौकरानी हो, वो मालकिन तो आनंदित रहनी चाहिए ना, खुश। लेकिन ये मालकिन सारा दिन बहुत परेशान रहती थी। ये खुद उनसे काम कराती और तुमने बर्तन ऐसे नहीं मांजे हैं, देखा यहां तो सफाई छोड़ दी, गुस्सा कर रही है, शाउटिंग कर रही है, कपड़े तुमने ऐसे नहीं धोए, तुमसे आते ही नहीं धोने, रोज तुम्हें सिखाती हूं तुम कभी नहीं सीखोगी, और वो सारा दिन परेशान रहती। नौकर काम करते और ये परेशान रहती। तो मेरे पास ये केस आया, मैंने सुनी उसकी सब बात, कहा हमारे इन नौकरों को बुद्धि नहीं है। बार बार ये कहती थी इनको बुद्धि नहीं है, क्या उत्तर देना चाहिए। मैंने यही उत्तर दिया कि अगर इनको बुद्धि होती तो ये तुम्हारे बर्तन मांजने आती क्या। क्या समझती हैं माताएं, आती बर्तन मांजने, फिर तो किसी ऑफिस में नौकरी ढूंढती ना, कंप्यूटर सीखती अच्छा। इस संसार में हरेक की बुद्धि अपनी अपनी, वो दोनों नौकरानियों के रहते हुए आनंदित जीवन भी जी सकती थी। फिर हमने उसको कहा इनको सिखाओ, एक हफ्ता दे दो सिखाने में, वे बर्तन ऐसे मांझ लेना, पहुंच के धूप में रख देना थोड़ी देर, सफाई कहीं गड़बड़ रह गई प्यार से बता दो, यहां और अच्छी तरह सफाई कर लेना। अगले दिन वो करेंगी। अब वो नौकरानी भी इतनी डरी डरी रहती कि अगले दिन डबल गलती करती थी, क्योंकि क्रोध का प्रेशर मनुष्य की विवेक शक्ति को कमजोर करने लगता है। इसलिए आप अपने घर में भी इससे बचेंगे। और आजकल तो डॉक्टर बहुत ही कहते हैं क्रोध से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट पर इफेक्ट, डायबिटीज, ये सब चीजें होने लगी हैं, इनसे बहुत बचना है। तो दो चीजें, एक्सपेक्टेशंस कम करेंगे, धैर्यवत होंगे, क्रोध की अग्नि शांत होने लगेगी और हम अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे। देखिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति जब वो बुजुर्ग हो जाता है, कईयों की शिकायत होती है, बुजुर्ग कई बैठे हैं, बुरा ना मानना मेरी बात का, कि हमारे बच्चे पोतरे हमारी सेवा नहीं करते। और कई बुजुर्गों की ऐसी नेचर होती है कि पोतरे उनके पास से जाना ही नहीं चाहते। कारण बस यही सीखना है, अपना स्वभाव, अपना बोलने का तरीका इतना अच्छा हो कि आपको मांगना ही ना पड़े कि कोई मेरी सेवा करो, कोई मुझे दवाई दो, कोई मुझे ये चीज दो। लोग आपकी सेवा करके अपने को भाग्यवान अनुभव करने लगे। तो अपने संस्कारों को बहुत स्वीट एंड सॉफ्ट करना है, चित्त को शांत करना है। मैं एक चीज जो सबको कहता हूं, आप सबको भी कहूंगा आप 10 मिनट में, और मेरा ये लक्ष्य रहता है कि सारा संसार इसको सीख ले, युवक भी सीख लें, बुजुर्ग, छोटे बड़े सब सीखेंगे। सब्जेक्ट वो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं ब्रीफ करता हूं, और वो है कि जब हम सवेरे उठते हैं तो पहले 10 मिनट हमारे लिए बहुत सुंदर समय होता है, क्योंकि उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अंतर्मन जगा रहता है। ध्यान देंगे आप, लेकिन ये सिद्धांत उन लोगों के लिए काम करेगा जो 6 बजे तक उठेंगे। सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है। अब देखिए लोग क्या गलती करते हैं, उठते ही अखबार पढ़ते हैं, अखबारों में पहले पेज पर उस दिन की सबसे खतरनाक न्यूज होती है, पढ़ते ही अंदर में क्या जाएगा, अशांति, निगेटिविटी। ये जीवन के लिए बहुत खतरनाक है, मनुष्य को तब पता नहीं चलेगा। मान लो उसने पढ़ा कि नेपाल में एक गांव पूरा नष्ट हो गया, कोई वहां देखने भी नहीं जा रहा है, तो एकदम एक अशांति जैसी, एक बैड फीलिंग अंदर में जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, वो उसे स्वीकार कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, और इसका इफेक्ट हमारे जीवन पर पड़ेगा। जो लोग देर से उठते हैं, 9 बजे, 10 बजे, 11, 12 तक भी लोग उठते हैं, देखिए इस टाइम पर आप ध्यान दें, सूरज उग चुका है, उसकी किरणों से संसार की अनेक चीजें जागृत हो गई हैं, सभी लोग जगे हुए हैं, अनेकों की निगेटिव एनर्जी वातावरण में फैल गई है। जो व्यक्ति देर से उठेगा वो उन्हें रिसीव करने लगेगा। इसलिए देर से उठने वाले व्यक्ति का जीवन कभी भी सुंदर नहीं हो सकता। ठीक है, कईयों को रात को देर तक अपना कोई कार्यक्रम देना है, होगा, लेकिन आप लक्ष्य बनाओ, जब आप कर सकते हैं तो 6 बजे से पहले पहले उठ जाओ और इन 10 मिनटों का यूज करो। क्या यूज करना है, अपने को रोज सवेरे सुंदर विचार देकर जागृत करें, अपने को जगाएं, अपनी सोई हुई एनर्जी को, सोई हुई चेतना को, सोए हुए टैलेंट्स को जगाएंगे आप। मैं पहले बच्चों के लिए बता रहा हूं, छोटे बच्चे 2-4 दिख रहे हैं मुझे, बच्चे ध्यान से सुन लें, उनकी माताएं सुन लें, अपने घरों में जो भी छोटे बच्चे आपके हैं उन्हें आप ये बात सिखाएं, बहुत यूजफुल। बच्चे उठे, चाहे मुख से बुलवा दो छोटे बच्चों से, मैं बुद्धिमान हूं, मैं चरित्रवान हूं, मैं एकाग्र चित्त हूं। तीन तीन बार करें, है जो स्टूडेंट बैठे आप सब करना, तीन तीन बार। मैं बुद्धिमान हूं, स्टेबल माइंड हूं, मेरे पास बहुत अच्छी बुद्धि है। इसके विपरीत भी बता दूं, कई लोगों को क्या होता है जीवन में, पता नहीं मेरी बुद्धि को तो क्या हो गया है, उठते ही सोच लिया पता नहीं मेरी बुद्धि तो डल हो गई है। तो डल होती जाएगी, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए सवेरे उठकर अच्छे से अच्छे विचार करेंगे, इतना ध्यान दें कि पिछले दिन के विचार आज ना आए बुरे निगेटिव, कोई टेंशन के विचार ना आ जाए, कोई निराशा के विचार ना आ जाए, कहीं असफलता मिल गई हो कल परसों उसकी निगेटिव फीलिंग ना हो जाए। उठते ही 10 मिनटों को आप एंजॉय करना। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपका सेपरेट रूम हो तो उठते ही जरा डांस कर देना अच्छे संकल्पों में, क्या मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। देखना इफेक्ट जीवन पर, बॉडी भी एकदम थ्रिलिंग हो जाएगी, एनर्जेटिक हो जाएंगे आप। मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत सफल हूं। देखो दो संकल्प मैं सिखाता हूं, आपने टीवी से सुने होंगे, मैं भगवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उठते ही अगर 7 बार कोई संकल्प कर ले, 5 बार भी कर ले, तो इसी तरह की एनर्जी वाइब्रेट होगी हमसे और वो हमें सफल करेगी जीवन में। जरूरी नहीं एक संकल्प सदा ही करना है, 7-7 दिन कर लें, फिर छोड़ छोड़ के कर लें। मैं बहुत सुखी हूं, मैं माताओं को बहुत सिखाता हूं ये बात। माताएं क्या है, छोटी मोटी बातों से दुखी रहती हैं, उठते ही भी सोचेंगी बहुत दुखी हूं, इसने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया, पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी, न मरती न जीने देती, इससे पीछा छूट, हे प्रभु इसको जल्दी उठा लो। प्रभु जी कहेंगे नहीं अभी रखना है थोड़े दिन और। जो आप ये सोचेंगे वही होता दिखाई देगा आपको। इसलिए सवेरे उठते ही मैं आत्मा बहुत सुखी हूं, मैं गरीब हूं ये नहीं, मैं बहुत धनवान हूं। अगर आपने सोच लिया मैं बहुत गरीब हूं तो गरीबी आपका पीछे लग जाएगी। मैं संपूर्ण सफल हूं, संकल्प करो। अच्छा देखो एक बहन का अनुभव सुना देता हूं, यहां बैठी है या चली गई, हमारी टीचर बहन है, आई थी यहां तो पीछे मैं उनके सेंटर में गया था तो मुझे बीमारियां कई बताई थी कि भाई ये बीमारी मुझे तंग करती हैं, हेरिडिटरी है, दादा को भी थी, फादर को भी थी, अब हमें भी है बच्चों को, दमा अर्थराइटिस। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका इलाज मेडिकल साइंस पूरा कर नहीं पाती, तो हम उसके साथ स्पिरिचुअलिटी को जोड़ते हैं। तो वो मुझे परसों यहां सुना रही थी कि मैंने एक बहुत अच्छा अभ्यास किया, आप सबके लिए बहुत सुंदर बात है जीवन के लिए, कहा मैंने एक बहुत अच्छा अभ्यास किया कि जिसे भी देखूं उसे दुआएं दूं मन से ये स्वस्थ हो जाएं। और कहा मैं स्वस्थ हो गई। मैंने कहा यह अभ्यास तो मैं भी कर लेता हूं, मेरी भी टांग में कुछ दिन से दर्द हो गया है, मैं अपने प्रयोग नहीं किए थोड़े से अभी 3 दिन से किए तो ठीक होने लगा। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम एक सिद्धांत लोगों को सिखाया करते हैं, उसी से जुड़ी हुई ये बात है कि जो कुछ हम दूसरों को देंगे वो डबल होकर हमारे पास आ जाएगा। खुशी देंगे बहुत खुश रहेंगे, सुख देंगे सुखी रहेंगे। इसी सिद्धांत से बिल्कुल ये रिलेट हो गया, सब स्वस्थ हैं तो उनके वाइब्रेशंस हमको आके हमें स्वस्थ बना देंगे। तो सवेरे उठकर आप अपने को सुंदर संकल्पों से रोज एनर्जेटिक करें। जैसे हम चाय पीते हैं भाई, एनर्जी आ जाए, थोड़ी हम फ्रेश हो जाएं, नहाए धोएंगे, कुछ नाश्ता करेंगे, ये सब शरीर को एनर्जी देने वाले हैं। मन को भी रोज सबको एनर्जी देनी है। यही बात वर्तमान संसार में एजुकेटेड लोगों को भी मिस है कि हम अपने मन और बुद्धि को एनर्जी देना जानते ही नहीं, उसका ख्याल ही नहीं करते, जबकि उनकी दोनों की एनर्जी लगातार यूज हो रही है, कम हो रही है। तो रोज सुंदर संकल्प करना, मैं बहुत पावरफुल हूं, सफलता तो मेरी परछाई है, मेरे परिवार में बहुत प्यार है, बहनें सोचेंगी मेरा पति बहुत अच्छा है, नहीं तो सोचते हैं ना एक ऐसा पति मिल गया इसके साथ तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा, अब ये नहीं सोचेंगे। जिनका किसी से संबंध अच्छा नहीं है संसार में, सवेरे उठते ही संकल्प करना, मैं भगवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूं और ये व्यक्ति मेरा गुड फ्रेंड है, तीन बार कर लेना, देखना रिजल्ट वो आपका कुछ ही दिनों में गुड फ्रेंड बन जाएगा। इन सब बातों का सार ये है कि हमें अपने मन की शक्ति को कहीं भी नष्ट नहीं करना है। कोई भी निगेटिव विचार हमारे मन को अशांत करता है, कोई भी शत्रु भाव, बदले की भावना हमारे मन को अशांत करती है, क्षमा कर दो सबको, सुखी हो जाएंगे। तो जितना हमारा चित्त शांत रहेगा, फिर सुन ले लास्ट बात, सफलता हमारे आगे पीछे चलेगी। जितना हमारा चित्त शांत रहेगा, बौद्धिक शक्ति उतनी ही तीव्र हो जाएगी, एकाग्रता की शक्ति उतनी ही बढ़ जाएगी। चाहे आप गाते हो, चाहे डांस करते हो, हर कार्य में एकाग्रता चाहिए। चाहे आप मान लो हारमोनियम ही बजानी है, कंसंट्रेशन फुल चाहिए। तो इन सब चीजों से कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो सभी, बस लास्ट लाइन बोलना चाहूंगा, अपने जीवन को वैल्यू दें, अपने मन को वैल्यू दें, एक एक विचार को, अपने समय को वैल्यू दें, तो जो भी टैलेंट आपका है, जो भी आप करते हैं, उसमें और निखार आ जाएगा, चार चांद लग जाएंगे आपकी उस योग्यता में और आपकी वाह वाह होगी। मेरा भी यही आप सबके लिए शुभ संकल्प है, शुभ भावना है। आप अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ें और अपने टैलेंट्स ऊपर वाले को दिखाया करें। हम डांस कर रहे हैं, जरा देख लो, तुम भी डांस करो ऊपर, दोनों डांस करेंगे तो जीवन एंजॉयमेंट से भर जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अब हम 5 मिनट फिर से डीप साइलेंस में, और जैसे मैंने आपको कहा सवेरे उठते ही ये अनुभव करना। अब हम योग अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा यहां हूं, गीत बजाएंगे भाई, मैं आत्मा यहां हूं और ऊपर शिव बाबा, उसकी एनर्जी, उसकी किरणें, उसके वाइब्रेशंस नीचे मुझ में समा रहे हैं।
चले प्यार प्रभु का लुटाते चले,
देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले।
दीप राहों में चलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले,
देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लौटाते चले।
कोमल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने प्यार प्रभु का लुटाते चले।
ईश्वर की पहचान बने प्यार प्रभु का लुटाते चले।
दीप राहों में चलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले
देते